एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी जबरदस्त किताब की गहराइयों में उतरने वाले हैं जिसने, सच कहूं तो, सैन्य इतिहास को देखने का नजरिया ही पलट दिया है।
बिल्कुल।
और ये किताब है जॉन कीगन की द फेस ऑफ बैटल।
बिल्कुल। और ये किताब इसलिए इतनी खास है क्योंकि ये उन पुरानी कहानियों से एकदम हटकर है जहाँ सिर्फ राजा, जनरल और उनकी बड़ी बड़ी रणनीतियों का ही जिक्र मिलता था, जिससे कीगन थोड़ा मजाक में ड्रम और नगाड़े वाला इतिहास कहते थे।
हाँ हाँ, मतलब सिर्फ शोर और दिखावा।
एग्जैक्टली।
ये किताब हमें सीधा, मतलब सीधा युद्ध के मैदान में उस आम सिपाही की जगह खड़ा कर देती है और पूछती है, भाई असल में लड़ना होता कैसा है,
बिल्कुल।
क्या महसूस होता है उस वक्त।
और यही बात इसे आज भी इतनी इतनी जरूरी बना देती है ना।
बिल्कुल, क्योंकि युद्ध तो देखिए आज भी हो रहे हैं, और ये किताब हमें किसी भी जमाने के युद्ध के पीछे का जो असली मानवीय अनुभव है उसे समझने में मदद करती है। वो डर, वो थकान, वो जान बचाने की जद्दोजहद, और हाँ, वो हिम्मत भी।
सही का, ये सिर्फ नक्शों और आंकड़ों की कहानी नहीं है, ये इंसान की कहानी है।
असल में तो बात शुरू करते हैं इस कहानी के सूत्रधार से, जॉन कीगन।
हाँ।
कीगन जिनका समय था 1934 से 2012, वो 20वीं सदी के, मतलब सबसे प्रभावशाली ब्रिटिश सैन्य इतिहासकारों में गिने जाते हैं। और उनकी खासियत सिर्फ लड़ाइयों का लेखा जोखा रखना नहीं थी, बल्कि युद्ध का जो मानवीय पहलू है, उसका मनोवैज्ञानिक असर, उसको समझना था।
हाँ, और एक दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने करीब 26 साल, सोचिए 26 साल, रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट में पढ़ाया। ये वो जगह है जहां ब्रिटिश सेना के भावी अफसर ट्रेनिंग लेते हैं, तो उन्होंने सीधे उन लोगों को इतिहास पढ़ाया जो कल को सेना को लीड करने वाले थे।
सही, इससे उन्हें सेना की सोच, उसकी संस्कृति की बहुत गहरी अंदरूनी समझ मिली होगी जो शायद बाहर वालों को नहीं होती।
और देखिए, मजे की बात यह है, जो थोड़ी शायद अटपटी भी लगे, कि कीगन ने खुद कभी युद्ध में हिस्सा नहीं लिया।
अच्छा।
हाँ, बचपन में उन्हें टीबी हो गया था, उस वजह से वो सेना में भर्ती नहीं हो सके, लेकिन वो मानते थे कि शायद इसी दूरी ने, इसी बाहरी नजरिए ने उन्हें ज्यादा निष्पक्ष और ज्यादा सहानुभूति से लिखने में मदद की।
एक बाहरी व्यक्ति की तरह वो बुनियादी सवाल पूछ पाए।
बिल्कुल, जैसे कि कोई लड़ता क्यों है, डर के मारे भाग क्यों नहीं जाता, ये सब सवाल जो शायद वर्दी पहनने वाला ना सोचे।
तो उनका दृष्टिकोण इसीलिए इतना महत्वपूर्ण हो गया। उन्होंने अकादमिक रिसर्च की जो बारीकी होती है,
हाँ।
उसको सेना की जमीनी हकीकत की समझ के साथ मिला दिया। उन्होंने सिर्फ ये नहीं बताया कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश की कि क्यों हुआ, और सबसे जरूरी, कैसा महसूस हुआ।
सही, उन्होंने स्थापित धारणाओं को चैलेंज किया और इतिहास को नीचे से, मतलब आम सिपाही की नज़र से देखने का रास्ता खोला। अब आते हैं किताब पर, द फेस ऑफ बैटल। जैसा हमने शुरू में कहा, इसका मकसद पारंपरिक सैन्य इतिहास से बहुत आगे जाना है।
वो जो सिर्फ जीत हार और रणनीतियों पर ही टिका रहता है।
हाँ, वही कीगन हमें युद्ध का असली, कच्चा और अक्सर कहूँ तो भयानक अनुभव महसूस कराना चाहते हैं। सैनिक क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, उनकी इंद्रियां क्या महसूस करती हैं, उनके दिमाग में क्या उथल पुथल मचती है, ये सब।
ये उन तस्वीरों को तोड़ती है जो युद्ध को अक्सर किसी फिल्म की तरह दिखाती हैं, रोमांचक या साफ सुथरा।
बिल्कुल।
और इसके लिए कीगन ने एक बहुत ही अनूठा तरीका अपनाया है। उन्होंने तीन बहुत अलग अलग ऐतिहासिक लड़ाइयों को चुना है, एगिनकोट 1415, वाटरलू 1815 और सोम 1916। ये कोई बस यूं ही चुन ली गई लड़ाइयां नहीं है ना।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बहुत सोचा समझा चुनाव है। हर लड़ाई एक अलग युग की कहानी कहती है। एगिनकोट वो मध्य युग की हाथापाई वाली लड़ाई जहां दुश्मन आपकी आंखों के बिल्कुल सामने होता था।
हाँ।
फिर वाटरलू, नेपोलियन का जमाना, बारूद का युग, जहां थोड़ी दूरी आ गई, तोपें गरजने लगी। और फिर सोम, पहले विश्व युद्ध का वो भयानक दिन, औद्योगिक युग का मशीनीकृत नरसंहार जहां इंसान सिर्फ एक पुर्जा बन के रह गया था।
तो इन तीन लड़ाइयों के जरिए कीगन ये दिखाते हैं कि कैसे तकनीक ने धीरे धीरे युद्ध का चेहरा ही बदल दिया, उसे ज्यादा घातक बनाया, ज्यादा बड़े पैमाने का बनाया, और साथ ही ज्यादा अमानवीय, ज्यादा अव्यक्तिक बना दिया।
सही।
जहां एगिनकोट में शायद दुश्मन का चेहरा दिखता था, सोम में मौत मीलों दूर से एक अनदेखे दुश्मन के हाथों आ सकती थी। ये किताब सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं है,
नहीं,
ये पूछती है उस सिपाही के लिए इसका मतलब क्या था, उसके अनुभव पर क्या असर पड़ा।
कीगन की जो विश्लेषण करने की पद्धति है वो भी बहुत अलग है। वो सिर्फ नक्शे और सेना की चालें नहीं देखते, वो सैनिकों की लिखी चिट्ठियों, उनकी डायरियों में गोता लगाते हैं। वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि अलग अलग हथियारों का इंसान के शरीर और दिमाग पर क्या असर होता था। युद्ध भूमि का भूगोल, मतलब कीचड़, ठंड, गर्मी, लड़ाई को कैसे प्रभावित करता था, और सबसे जरूरी, सैनिकों की मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या थी।
चलिए एगिनकॉट 1415 से शुरू करते हैं। ये तो मध्ययुगीन लड़ाई का चरम था।
हाँ।
नजदीकी क्रूर आमने सामने की जंग। यहाँ दुश्मन कोई अनजान आंकड़ा नहीं था, बल्कि एक जीता जागता इंसान होता था जिसे आपको बिल्कुल करीब से मारना पड़ता था।
बिल्कुल, कीगन बताते हैं कि अंग्रेजी लॉन्गबो, वो लंबा धनुष, कितना घातक था। उसे चलाने में जबरदस्त ताकत लगती थी, लेकिन उसके तीरों की बारिश कवच को भी भेद सकती थी। ये सिर्फ शारीरिक चोट नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक दहशत भी थी कि आसमान से मौत बरस रही है।
और दूसरी तरफ वो भारी कवच पहने फ्रांसीसी शूरवीर, उनके लिए लड़ाई एक अलग ही अनुभव था।
हाँ, कवच के अंदर घुटन, भयानक थकान, हिलने डुलने में परेशानी, और वो कीचड़ भरी जमीन, चलना एक बुरे सपने जैसा था।
सही।
कीगन बताते हैं कि अगर कोई गिर गया तो उठना लगभग नामुमकिन था।
बापरे।
यहाँ जीत सिर्फ रणनीति या बहादुरी से नहीं, बल्कि तकनीक, धनुष, जमीन, कीचड़ और मानवीय सहनशक्ति की सीमाओं, मतलब थकान, डर, इनसे तय हुई।
हाँ, और कीगन हेनरी पंचम के कैदियों को मारने के आदेश को भी क्रूरता नहीं बल्कि उस वक्त की एक भयानक जरूरत बताते हैं।
बिल्कुल, एक थकी हरी छोटी सेना के पास हजारों कैदियों को संभालने का कोई जरिया ही नहीं था।
बहुत कठिन परिस्थिति।
तो ये थी नजदीकी लड़ाई। अब 400 साल आगे चलते हैं, वॉटरलू 1815 पर, नेपोलियन का जमाना, बारूद का युग।
हाँ, यहाँ लड़ाई थोड़ी और संगठित हो गई, थोड़ी दूरी वाली। यहाँ ब्रिटिश इन्फेंट्री स्क्वायर का जिक्र जरूरी है।
एक रक्षात्मक रणनीति नहीं मानते।
अच्छा,
वो इसे फ्रांसीसी घुड़सवारों के हमलों के सामने एक मनोवैज्ञानिक किले की तरह देखते हैं। सैनिकों को कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना होता था, जबकि तोप के गोले आसपास फट रहे होते थे। सोचिए जरा।
और उस जमाने की बंदूकें, मस्केट, वो आज की तरह भरोसेमंद तो थी नहीं।
बिल्कुल नहीं, निशाना लगाना मुश्किल था, इसलिए जोर व्यक्तिगत निशानेबाजी पर नहीं बल्कि एक साथ सामूहिक गोलीबारी पर होता था, वॉलीज जिसे कहते हैं। लेकिन वॉटरलू में एक नया डर शामिल हुआ, तोप खाने का डर, दूर से आती अचानक बिना चेहरा देखे मौत।
ओह।
कीगन बताते हैं कि तोप के गोलों से होने वाले घाव इतने भयानक होते थे कि मध्ययुगीन योद्धा शायद उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। युद्ध का मैदान धुएं और कान फाड़ देने वाले शोर से भरा था।
तो यहाँ प्रेरणा कहाँ से आती थी?
अनुशासन, अफसरों की मौजूदगी और रेजिमेंट की इज्जत, ये चीजें थीं।
ये औद्योगिक युद्ध का चेहरा था, मशीनीकृत, अमानवीय नरसंहार।
हाँ, यहाँ व्यक्तिगत बहादुरी या लड़ने का हुनर लगभग बेमानी हो गया था। हफ्तों की जबरदस्त बमबारी के बाद जब ब्रिटिश सैनिक आगे बढ़े तो उनका सामना हुआ मशीन गन से। कीगन दिल दहलाने वाला वर्णन करते हैं कि कैसे कुछ ही मशीन गने मिनटों में हजारों सैनिकों को काट के रख सकती थी।
हे भगवान।
और वो जमीन जिसे नो मैन्स लैंड कहा जाता था, मतलब दो दुश्मन खाइयों के बीच की खाली खतरनाक जमीन, वो खुद एक मौत का जाल बन चुकी थी।
कीचड़, गड्ढे, कंटीले तार।
हाँ, इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ने का आदेश देना एक तरह से मौत का फरमान देने जैसा था।
तो सैनिक का अनुभव यहाँ कैसा था, मतलब क्या चल रहा था उसके दिमाग में?
दुश्मन अदृश्य था, शायद मीलों दूर, मौत कहीं से भी आ सकती थी। सैनिक पूरी तरह असहाय महसूस करते थे, जैसे किसी विशालकाय मशीन के छोटे से पुर्जे हों। जीवित रहना हुनर नहीं था, सिर्फ किस्मत की बात थी।
और इस माहौल में कनांग और कंट्रोल तो लगभग खत्म ही हो गया होगा।
बिल्कुल, शोर और अराजकता में संदेश पहुंचाना नामुमकिन था। लड़ने की प्रेरणा शायद सिर्फ अपने साथियों के प्रति वफादारी और कर्तव्य की एक धुंधली सी भावना बची थी।
यहीं पर शेल शॉक का भयानक रूप सामने आया होगा।
हाँ बिल्कुल, युद्ध के लगातार बमबारी और तनाव से होने वाला वो गहरा मानसिक सदमा, जिसे आज हम PTSD के रूप में बेहतर समझते हैं।
कीगन ये भी दिखाते हैं कि कैसे कमांडर्स, जो शायद 19वीं सदी की सोच रखते थे, वो 20वीं सदी की इस नई भयानक तकनीक से निपटने में पूरी तरह नाकाम रहे।
तकनीक इंसान से बहुत आगे निकल गई थी।
इन तीन लड़ाइयों के विश्लेषण से कीगन कई बड़े और जरूरी विषय सामने लाते हैं। पहला और शायद सबसे अहम है, तकनीक के जरिए युद्ध का लगातार अमानवीकरण।
हाँ, ये तो साफ दिखता है।
एगिनकॉट की नजदीकी क्रूरता से सोम के औद्योगिक कत्लेआम तक युद्ध ज्यादा से ज्यादा मशीनी, दूरस्थ और अव्यक्तिक होता गया।
दुश्मन का चेहरा जैसे धुंधला होता गया।
बिल्कुल, और दूसरा बड़ा संदेश है सैन्य महिमा और वीरता की उन चमचमाती कहानियों पर सवाल उठाना। कीगन युद्ध की जो रोमांटिक छवि है उसे पूरी तरह तोड़ देते हैं। वो दिखाते हैं कि युद्ध अक्सर भ्रम, गंदगी, डर और बस किसी तरह जिंदा बच जाने की कहानी होती है।
एगेनकोर्ट में शायद क्रूर कुशलता थी, वाटरलू में अनुशासित धीरज था, लेकिन सोम में वीरता के पुराने पैमाने पूरी तरह ढह गए।
ये सोचना ही चौंकाने वाला है कि हम युद्ध को कैसे देखते आए हैं और असलियत क्या होती है।
तीसरा अहम मुद्दा है मानवीय कारकों की प्रधानता। देखिए, रणनीति और हथियार अपनी जगह हैं, लेकिन कीगन बार बार दिखाते हैं कि डर, थकान, भूख, ठंड और सबसे बढ़कर सैनिकों का आपसी भाईचारा और उनका मनोबल, ये लड़ाई का नतीजा तय करने में कितने निर्णायक होते हैं।
हाँ, एक टूटे हुए हौसले वाली सेना बेहतरीन हथियारों के बावजूद हार सकती है। ये बात शायद हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी देख सकते हैं, टीम वर्क में, है ना?
बिल्कुल, मुश्किल हालात में टीम का मनोबल ही उसे बचाता है।
चौथा थीम है युद्ध में कमान और नियंत्रण का टूटना। जैसे जैसे लड़ाई बड़ी और जटिल होती गई, कमांडरों का उस पर सीधा कंट्रोल कम होता गया।
हाँ, एगेनकोर्ट में राजा शायद खुद लड़ रहा था, लेकिन सोम में जनरल हेडक्वार्टर्स में थे, लड़ाई के मैदान से मीलों दूर, और उन तक सही जानकारी पहुंचना भी एक चुनौती थी।
ये आज के बड़े और जटिल प्रोजेक्ट्स या संगठनों के प्रबंधन की चुनौतियों जैसा ही लगता है, नहीं?
काफी हद तक। पांचवा थीम थोड़ा विरोधाभासी है कि बदलती हकीकत के बावजूद पुरानी योद्धा संस्कृति और सोच कैसे बनी रहती है।
अच्छा, कैसे?
जैसे वाटरलू में फ्रांसीसी घुड़सवारों के पुराने ढंग के हमले, या सोम में पैदल सेना के वो आत्मघाती हमले। ये दिखाते हैं कि सैन्य संगठन और सोच बदलने में कितने धीमे या अनिच्छुक हो सकते हैं, भले ही तकनीक उन्हें बेअसर बना चुकी हो।
ये शायद हर उस संगठन के लिए एक सबक है जो बदलाव का सामना कर रहा है।
और आखिर में छठा थीम युद्ध के तनाव का सार्वभौमिक मानवीय अनुभव। तकनीक बदल गई, हथियार बदल गए, पैमाने बदल गए, लेकिन डर, भ्रम, अपने साथियों पर निर्भरता, जिंदा रहने की इच्छा,
हाँ,
ये भावनाएं हर युग के सैनिक के लिए शायद एक जैसी ही रहीं। ये वो धागा है जो एगेनकोर्ट से लेकर आज तक के सैनिकों को जोड़ता है।
कीगन की किताब ऐसे विचारों से भरी पड़ी है जो आपको रुककर सोचने पर मजबूर करते हैं। उनके कुछ मुख्य तर्क वाकई दिमाग में बैठ जाते हैं।
जैसे उनका ये कहना कि इतिहास का चेहरा लड़ाई का चेहरा नहीं होता।
कितना कितना गहरा विचार है ये,
है ना?
इसका मतलब है कि जो इतिहास हम किताबों में पढ़ते हैं वो अक्सर युद्ध की असली कच्ची डरावनी हकीकत को नहीं पकड़ पाता। वो एक साफ सुथरी व्यवस्थित कहानी होती है, जबकि लड़ाई तो मतलब अराजकता और भ्रम का दूसरा नाम है।
और ये विचार कि सैनिक की कहानी ही असली कहानी है, ये कीगन के पूरे काम का निचोड़ है एक तरह से।
हाँ,
अगर युद्ध को समझना है तो सिर्फ जनरलों की योजनाओं को नहीं, बल्कि उस सैनिक के अनुभव को सुनना होगा जो बंदूक उठाकर लड़ रहा था, जो डर रहा था, जो मर रहा था।
एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो कीगन कहते हैं, लड़ाई अनिवार्य रूप से एक नैतिक संघर्ष है।
इसका क्या मतलब है?
उनका मतलब था कि जीत सिर्फ हथियारों या संख्या बल पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर करती है कि किस पक्ष का हौसला बना रहता है, किसकी लड़ने की इच्छा शक्ति ज्यादा मजबूत है। ये विल पावर की लड़ाई है।
अच्छा, हाँ, ये बात सही है। और भविष्य को लेकर उनका एक अंदाज़ा जो आज कितना कितना सही साबित हो रहा है, भविष्य के युद्ध क्षेत्र पुरुषों से खाली हो सकते हैं।
ये उन्होंने 1976 में लिखा था।
सोचिए, आज जब हम ड्रोन, रिमोट वॉरफेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो लगता है कीगन ने भविष्य देख लिया था।
ये युद्ध के और भी ज्यादा दूरस्थ और अमानवीय होने का संकेत है, डरावना भी है।
बिल्कुल, और आखिर में ये अवलोकन कि लड़ाई का आदि होने जैसी कोई चीज नहीं होती।
हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है।
कई बार हमें लगता है कि सैनिक अनुभव के साथ सख्त हो जाते हैं, युद्ध के आदि हो जाते हैं, लेकिन कीगन का तर्क था कि हर लड़ाई का अनुभव सैनिक पर एक और घाव छोड़ जाता है, उसकी मनोवैज्ञानिक क्षति को बढ़ाता है, कम नहीं करता।
ये आज की PTSD की समझ के कितने करीब है, अद्भुत।
ये सारे विचार सिर्फ इतिहास की किताबों के लिए नहीं है, इनसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी बहुत कुछ सीख सकते हैं।
हाँ, जैसे दबाव में नेतृत्व कैसे करें, वाटरलू में वेलिंगटन का जानबूझकर शांत दिखना, ये दिखाता है कि मुश्किल वक्त में एक लीडर का संयम पूरी टीम का हौसला कैसे बढ़ा सकता है।
बिल्कुल, अपने ऑफिस में किसी बड़े प्रोजेक्ट के डेडलाइन प्रेशर में सोचिए, या किसी खेल टीम में जब वो हार रही हो।
हाँ, लीडर अगर घबरा जाए तो पूरी टीम बिखर सकती है।
सही, इसी तरह वाटरलू के इन्फेंट्री स्क्वायर का उदाहरण कैसे आपसी निर्भरता और संगठन डर पर काबू पाने में मदद करता है, ये किसी भी टीम के लिए सच है,
चाहे वो बिजनेस टीम हो या इमरजेंसी रेस्क्यू टीम। जब आप जानते हैं कि आपके साथी आपके साथ है तो मुश्किल थोड़ी आसान लगती है।
तकनीकी बदलाव का प्रबंधन भी एक बड़ी सीख है। पहले विश्व युद्ध के कमांडरों का संघर्ष दिखाता है कि कैसे संगठन नई तकनीक को अपनाने में हिचकिचाते हैं या उसे पुरानी सोच के साथ इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं।
सिर्फ नया टूल ले आना काफी नहीं है, पूरी सोच बदलनी पड़ती है। ये आज हर उस कंपनी या संस्था के लिए प्रासंगिक है जो डिजिटल बदलाव या AI जैसी नई चीजों का सामना कर रही है।
और अनिश्चितता में फैसले लेना, युद्ध का मैदान तो अनिश्चितता का ही दूसरा नाम है।
बिल्कुल,
वहाँ अक्सर अधूरी जानकारी के साथ तुरंत फैसले लेने पड़ते हैं। ये हमें सिखाता है कि जिंदगी में भी हमें कई बार बिना सब कुछ जाने आगे बढ़ना पड़ता है,
और ऐसे में लचीलापन और तेजी से प्रतिक्रिया देना कितना जरूरी है।
बिल्कुल, और शायद सबसे जरूरी बात, संगठनात्मक लक्ष्यों की मानवीय कीमत को समझना।
हाँ,
चाहे सेना हो, अस्पताल हो या कोई भी ज्यादा दबाव वाला पेशा, कीगन हमें याद दिलाते हैं कि इंसानी सहन शक्ति की एक सीमा होती है। बर्नआउट और मानसिक तनाव को नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है।
हमें सिस्टम बनाते समय इंसान को केंद्र में रखना होगा।
अंत में ये किताब हमें दुनिया में चल रहे मौजूदा संघर्षों को भी एक अलग नजरिए से देखने में मदद करती है।
हाँ, ये हमें सिर्फ खबरों की सुर्खियों और आंकड़ों से आगे बढ़कर उन इंसानों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जो इस हिंसा का सामना कर रहे हैं। ये सहानुभूति और आलोचनात्मक सोच दोनों को बढ़ाती है।
तो इस पूरी चर्चा से मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि युद्ध, चाहे कितना भी रणनीतिक या तकनीकी क्यों न लगे, आखिर में हार्ड मास, डर और हिम्मत की एक गहरी मानवीय कहानी है। कीगन हमें मजबूर करते हैं कि हम वर्दी के पीछे छिपे इंसान को देखें, उसकी आंखों से युद्ध के मैदान की भयावहता और कभी कभी उसकी बेतुकीपन को महसूस करें। और मेरे लिए सबसे अहम बात यह समझना है कि तकनीक ने युद्ध को कैसे मौलिक रूप से बदल दिया है, इसे और ज्यादा घातक और ज्यादा अव्यक्तिक बना दिया है। यह हमें आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेटेड हथियारों जैसी तकनीकों के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है कि इनका इंसानी अंतरात्मा पर क्या असर होगा। कीगन ने सैन्य इतिहास लेखन को हमेशा के लिए बदल दिया, ये साबित करके कि आम सैनिक की कहानी सिर्फ इतिहास का एक हिस्सा नहीं बल्कि उसका दिल है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।